हो गए भगवान। और गरुड़ के कंधे पर हाथ रख कर बड़े भाव भंगिमा से और बड़े सुंदर रूप से उनके सामने खड़े होकर के बोले, तुम जो कुछ वर मांगना चाहता है वो वर मांग लो, मैं तुम्हें अभी तुरंत दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा, इसके पहले श्लोक में है, हे कैवल्यनाथ, आप कैवल्य माने मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, अनायासी रूप में आप दे सकते हैं। मुक्ति देना किसी के बस की बात नहीं है, केवल भगवान ही दे सकते हैं। तो आप मुक्ति दे सकते हैं, किंतु हमको क्या इसकी जरूरत है। जत्र, जत्र माने जिस मुक्ति में, कैवल्य लाभ में, न जत्र, जत्र न जुष्मद चरणम बुजाशव, आपके चरण कमलों की मधु जहाँ नहीं है। चरण कमलों की मधु माने क्या? चरण कमलों, चरण कमलों ने भगवान के रूप गुण लीला इत्यादि जो कथाएं हैं वो अमृत कथाएं जहाँ पर नहीं है, अर्थात कैवल्य में नहीं है, मुक्ति में नहीं, इसलिए मुझको उसकी जरूरत है। न कामये, मैं उस मुक्ति की भी लालसा नहीं करता, उसकी मुझको कोई भी जरूरत नहीं। आप तो कैवल्य तक दे देंगे, ठीक है, आप समर्थ हैं, संसारिक सुखों की तो बात ही क्या, जिसमें जीव को अपात सुख मिलता है इन विषय सुखों में, किंतु अपात सुख होने के साथ साथ उसमें अंत में दुख ही दुख है, उसमें कोई सुख नहीं है। इसलिए भगवान किसी से छल नहीं करते, और देवता लोग देते हैं धन पुत्र परिवार ये सब चीज भव, और दूसरे देवता लोग सहज ही दे देते हैं, किंतु भगवान सोचते हैं कि इससे इससे का कल्याण नहीं होगा, इसलिए नहीं देते। विशेष करके जो भगवत भक्ति करते हैं किसी वैष्णव का आश्रय करके, उनसे तो वो कभी ये चीजें देने नहीं, मांगने पर भी नहीं देते, दीयमानम और वो देने पर भी वो नहीं देंगे, और मांगे भी तो वो नहीं देंगे। इसलिए वो नहीं देते, इसलिए न काम ये ना तदपि अहम, तदपि हम माने आप कैवल्यपति हैं, आप मोक्ष भी दे सकते हैं। अथवा यदि कैवल्य का अर्थ प्रेम ले लें, हे प्रभु आप तो कैवल्य तक अर्थात प्रेम तक, केवल प्रेम, गोपी प्रेम तक दे सकते हैं, इसलिए वहां पर मुक्ति में जिसमें आपकी लीला कथाओं का रस नहीं है, मैं उसको लेकर के क्या करूंगा, हमको उसकी जरूरत नहीं। ये दोनों महत्तमांतर हृदय हृदयात मुखच्युतो विधत्स्व करणाजुतम मेष मे बरह, यही सब प्रार्थनाओं को सुन करके हमारे अंदर भी ऐसे ही भावना हो, जो हम भी ऐसा ही चाहें। इसलिए कहते हैं वहां पर तो मुक्ति में तो ये सब चीजें नहीं है, भगवान की कथा लीला इत्यादि श्रवण करने की संभावना वहां है ही नहीं, क्योंकि वहां पर तो आराध्य और आराधक दोनों एक हो जाएगा। वहां पर तो कोई दास और प्रभु रहेगा ही नहीं, वहां तो सब एक साथ त्रिपुटी मिल जाएगी, इसलिए हमको हम तो यही चाहते हैं। हमारा वर यदि कहते हैं तो हमको वही वर दीजिए जो मैं चाह रहा हूं। क्या? विधत्स्व कर्णाजुतमेव मेष मे वर, कर्णाजुत माने अजुत, अजुत माने करोड़ करोड़, अरब खरब, हमारे अरब खरब कर्ण हो जाए कान, जब कान तुम लेकर के अरब खरब क्या करेगा, अरे महांतर महान पुरुष जो है महान महत्तमांत जो महत्व पुरुष है, भागवत में महत्व पुरुष का लक्षण दिया है। भगवान का कथा ही, भगवान की कथा ही जिनका प्राण है, ऐसे जो मुक्त महापुरुष है, विशेष करके निवृत्त तरसई उपगीयमानात बहुसधा श्रोत्र मनोभिरामात कौत्तम श्लोक गुणानुवादा विरज्जेत बिना प्रश्न। उनके हृदय से भौरों की बड़ी महत्तम औषधि निकलती रहती है, अपने आप झड़ती रहती है। उसको सब प्रकार के लोगों को श्रवण करना चाहिए, वो अमृत से भी अमृत है। जिसने उसको नहीं सुना वो आत्महत्याकारी अथवा बहेलिया माने पशुओं को वध करने वाले मनुष्य के समान है, जो भगवान की लीला कथाओं को छोड़ देता है। दूसरी बात, कैसा महत्पुरुष कैसा होना चाहिए, जिनके हृदय से मुख से जो गलित है हरि कथा हो रही है।
तस्मिन महान मुखरितो,
तस्मिन महान मुखरितो मधुभी, मधुभी माने मधु का जो मूर्तिमान रूप है, अतः तो रस का जो मूर्तिमान रूप है। मूर्तिमान रूप कौन है? रस के रसो वैसह कृष्ण है। तो उन वो जो मधु अपने हृदय में रख करके वो जो हरि कथा रूपी मधु अमृत को अपने आप निकलता रहता है, उसका यदि कोई तेज कानों से मैंने क्या अत्यंत गाढ़ कर बड़े आसक्ति के साथ उसके प्रत्येक शब्दों को अर्थ के द्वारा आस्वादन करते हुए और उसको पान करते हैं जो लोग, उनसे शोक मोह भय तृष्णा दुख सुख सब जगत का वो सब चला जाता है और भगवान के चरण में उनको भक्ति होती है। विशेष करके निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत यहाँ पर कहें महान महत्तमांतर हृदय, जो महत्पुरुष होते हैं उनके हृदय में भगवान की कथा रूपी अमृत होती है। भागवत ने कहा तो यहीं पर सुखमुखाद अमृत प्रवसन, ऐसा महान पुरुष यदि कोई हो सुखदेव गोस्वामी जैसा, तो उनके मुख से ये हरि कथा और अमृत से अमृतमयी मधुमयी हो करके मंगलमयी भी हो करके निकलती है। मुख अच्युत हो उससे निकलती है, तो उसको सुनने के लिए हमारे करोड़ों करोड़ों कान हो जाए, तो करोड़ों क्या जहाँ हो रहा हो वहाँ पर सुन लेना। तो महात्मा एक थोड़े हैं, वो तो कहीं नारद जी कथा कर रहे हैं, कहीं सुखदेव गोस्वामी, कहीं व्यास जी, कहीं पराशर जी, कहीं नवजोगेंद्र कवि हवि अंतरिक्ष इत्यादि सब करोड़ों करोड़ों, और इधर में यदि आ जाओ तो रूप सनातन इत्यादि सब भक्त लोग करोड़ों करोड़ों लोग भगवान की कथाओं का ये सब श्रवण करा रहे हैं। इसलिए हमारे करोड़ जहाँ जहाँ हरि कथा हो रही वहाँ पर मेरा कान एक एक लग गया उनका श्रवण कर रहा है। जहाँ अंतर हृदय से मुख के द्वारा च्युत हो रही है, गिर निकल रही है, अंतर में उनकी हरि कथा है ने? और वो फिर मुख के द्वारा वो निकल करके च्युत हो रही है, गिर रही है। ये সকলের হৃদয়ে আসলো না কেন? তাহলে ওই ভক্তের মধ্যে কোন স্পেশালিটি আছে যে ভক্তি বাধ্য হয়ে তার হৃদয়তে চলে গেল, আর সকলে হৃদয়তে যায় না কেন? আর সব লোক হৃদয় মেয়ে ভক্তি দেবী কেউ নেই যাতে, তো ভক্ত মেয়ে কুছ হয় না,
আধার
মেয়ে কুছ হয়। गोपियों के हृदय में ही वैसा क्यों हुआ? उनमें हृदयादिनी शक्ति का वो उतना क्यों प्रकाश हुआ? कृष्ण में क्यों नहीं हुआ? और तो बात छोड़ दो, कृष्ण में ही वो क्यों नहीं प्रकाशित हुआ? क्योंकि आधार है। जितना ही व्याख्या किया जाए सुंदर से सुंदर व्याख्या होगी, सभी सुंदर, एक एक से सुंदर और अच्छी और मधुर। पृथ्वी महाराज बोल पृथ्वी महाराज मथुन चल महत्तम अंतर हृदय, उनके अंतर में भगवान की लीला कथाएं सब भरी पड़ी है, कथा उनमें है अनंत सब कथाएं। वो सब कथाएं झरने की भांति अपने आप झरती हैं और उसको सुनने के लिए जहां जहां वो हैं हमारे करोड़ों करोड़ों कान हो जाए और उन कानों से भगवान की लीला कथाओं का सब। यही है प्रथमा भक्ति। सबसे पहले साधक के लिए भी भगवान की कथाओं को जो अधिक से अधिक सुनेगा उसको अधिक से अधिक, नहीं तो नाम में रुचि भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं। इसलिए हरि कथा को खूब प्रेम के साथ में सुन करके समझना चाहिए, उसको विचार करना चाहिए। यहाँ सुन करके फिर जाम रहते हैं वहां पर भजन करते हुए विचार करें उन सब, जहां से तुम्हार पद सेवा सुख नहीं। मुक्ति में कोई सेवक ही नहीं होता और सेव्य भी नहीं होता, वहां पर एक विकृत चिन्मय भाव होता है, वो भी आंशिक चित्त का विकृत प्रतिफलन उसमें है। उसमें भगवान की कोई लीला कथा कुछ नहीं है मुक्ति में, उसमें है मैं हूं ये भाव ही नहीं, एक पत्थर की भांति। इसलिए हम उसमें उसको नहीं चाहते। इसलिए जहां कहीं भी हमारा जन्म हो जाए, जैसे भी रहूं, हम भगवान की लीला कथाओं को भक्तों के मुख से सुन सके, बस यही आप हमको बर दीजिए और हमको कोई भी बर की जरूरत नहीं है। भक्ते हृदय होते तब गुण गान सुनिते अजूत कर्ण करो विधान। भक्तों के निकट स्वर्ग ब्रह्मलोक सार्वभौमत्व रसाधिपत्य माने पाताल का लोक राज्य और जोगेर अष्ट सिद्धि इत्यादि सब तुच्छ हैं। भगवान की लीला कथाओं के श्रवण में उनको इतना आनंद होता है जे ये सब विषय का जो आनंद है, स्वर्ग का आनंद है, पाताल में जो आनंद है, मुक्ति में जो आनंद है, वो कुछ भी नहीं है, बेकार की सब। कोई भी जो साधारण साधक भक्तों को भी भगवान की लीला कथा में जो आनंद मिलता है। ननाक पृष्ठम न च पारमेश्यम न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम न जोग सिद्धुर अपुनर्भवं वा समंजसत्वाभिरहय्य कांक्षे। ननाक पृष्ठम, अब यहाँ पर वित्तासु जी का उपाख्यान, ये इंद्र के द्वारे मारे जाने पर भी मन नहीं मरे और इंद्र के हाथ का वज्र भी गिर पड़ा। जब वज्र गिर पड़ा तो कतारे अत्यंत बराट इंद्र तुच्छ इंद्र, ये वज्र भी तुम्हारे हाथ से गिर गया, उठाओ उठाओ मैं अभी खड़ा हूं, उठा करके हमें मारो, बार बार ऐसा कहने लगे। तुम बरात मने मूर्ख है, तुम इतना दिन तक रहा भगवान के पास में सेवा किया और उनसे भक्ति का कोई वर न लेकर के तुम लोग यही वर मांगते हैं कि हमारा स्वर्ग सुख अटल अचल रहे, बस इसी में लग जाता है। और एक दिन तो ये जाएगा ही, स्वर्ग सुख भी तो नष्ट होगा और ये स्वर्ग में रहने से इधर उधर तुम लोग देवताओं के दैत्यों के डर के मारे कहीं फिर सागर में कि कहीं मानस सरोवर में कहीं कमल के फूल में कहीं छिपते हो, कभी इधर भागते हो कभी उधर भागते हो, सब समय दुखी रहते हैं और तभी प्रभु से उनकी भक्ति नहीं मांग करके ये विषय मांगता है, मैं इस शरीर से अब भजन नहीं कर सकता, तामस शरीर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारा यह शरीर छूट जाए, इसलिए तुम हमें मारो, तुम्हें पाप नहीं होगा। और वो इंद्र विचार करते हैं कि मैं इसे मारूंगा तो देखता हूं कि इसमें तो भक्त के सब लक्षण हैं, इसलिए इसको मैं कैसे मारूं? तो बार बार कहने पर भी जब नहीं मारे हैं तो सोचते ये क्या मारेगा, बस ध्यान लगा दिया उसी रणभूमि में। ध्यान जब भगवान के चरण कमलों को लगाया तो इतने में भगवान प्रकट हो गए और बोलने लगे जैसे तुम वर मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, बोले तुम कोई भी वर मांगेगा दे दे, तुम स्वर्ग का सुख ले लो, स्वर्ग का राज्य ले लो, इंद्रों को अभी हटा देता हूँ और तुमको दे देता हूँ, इसीलिए तो लड़ाई हो रही है, तो तुमको जिता देता हूँ और तुम हाँ स्वर्ग का राज्य ले लो, यदि इसे प्रसन्न नहीं हो तो तुम ध्रुव लेख लो, ले नना कपृष्टम, नना कपृष्टम ध्रुव का लोक ले, न पारमेष्टम ब्रह्मा जी पारमेष्टि पर, न सार्वभौम सार्वभौम का राज्य ले लो, मैंने समस्त पृथ्वी का राज्य जो होता है सार्वभौम, रसात पाताल का लोग जैसे बलि महाराज थे वो राज्य ले लो, न जोग सिद्धि अपुनर्भवंगा, अष्ट सिद्धियां नौ निधियां इत्यादि हैं ये सब ले लो। उन्होंने कहा जैसे ये भी हमको नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं लेकर के क्या करूंगा, स्वर्ग में की तय स्थिति जानता हूं इंद्र की, यही तो इंद्र हमारे सामने है, और पारमेश्वर ब्रह्मा का ही पद लेकर के हम क्या करेंगे, दिन रात तो संसार को बनाने में, और कोई असुर हो गया तो उसके डर के मारे हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष मधु कैटभ हो गए तो उनको उनके लिए मैं तंग हो जाऊँ, कभी विषय में ही फंस जाऊंगा, कोई सुंदरी एक कन्या पैदा कर दी तो उसी पर आसक्त हो गए, इससे काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य इसमें हम पड़े रहेंगे, हमको ये नहीं चाहिए। और फिर आपकी भी तो ब्रह्मा की भी आयु होती है, इसके बाद वो मरते हैं और फिर जन्म लेते हैं, हमको ये सब नहीं चाहिए, सार्वभौम की तो बात ही क्या, ये सब तो ये पृथ्वी के ये सब सुख हैं, रसाधिपत्यम पाताल लोक भी वैसा ही, योग सिद्धियां इनसे भी कुछ भी नहीं होगा, कुछ क्षण के लिए है, योग सिद्धि तो सौभरी ऋषि को भी थी तो उसे उनको क्या मिला, न अपुनर्भवं अपुनर्भवं बा अपुनर्भवं मैंने फिर हमारा जन्म और मरण न पुनर्भव पुनः पुनः जन्म मरण इसको बंद हो जाए का नाम है अपुनर्भव आराम मुक्ति ये संसार से, ये भी हमको इसकी भी जरूरत क्योंकि वहां पर कोई सुख नहीं है और यहाँ पर साधन भक्ति में अनर्थों का रहते हुए भी भगवान की लीला कथाओं के सुनने में कितना आनंद है और उसकी अर्थोपलब्धि हो कुछ भी ना हो भगवान का नाम जो कीर्तन है इसी में कितना आनंद है, कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी, और यदि उसमें पदों का अर्थ यदि हो ना कीर्तन में तो फिर कहना क्या, कोई कुछ नहीं जानता कि ऐसा ही यदि कहे राधा रमन हरि गोविंद जय इसके कहने में ही कितना आनंद, जसमती नंदन विभावरी शेष यदि करे ना कदम्ब कानन खेली परायण मानस चंद्र चकोर नाम सुधारस गाओ कृष्ण जस राखो वचन मत, ये सब का यदि पद यदि उसका अर्थ यदि समझ में आएगा तब तो फिर तीनों लोक को इसके ऊपर में न्योछा होता। और हरि कथा में कितने सुंदर सुंदर सब ये हैं, यदि उसका श्रवण करे और उसका अर्थ थोड़ा सा भी व्याख्या इत्यादि में हो तो उस समय में संसार का ये मुक्ति चुक्ति सब बेकार की हो जाती है, इसलिए कहते हैं वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे, आपके विरह में कुछ भी नहीं चाहता। हमने जो पहला बार जो मांगा है अजात पक्षा मियोमा नहीं, इसके ऊपर अहम हरे तो बादई कमूल दासानुदासो भविताश्म भूय मनस्मरेत आशपते गुणानं गणित वाक कर्म करो। हमने जो ये मांगा है बस आपका विरह न हो करके और उन चीजों को दीजिए, आपके साथ में हमारा मिलन हो, आप हमें दर्शन दें, और दर्शन देने के साथ साथ में वो तीन जो बर हमने पहले मांगा वो उसको हमको दे दीजिए, हम और को कुछ नहीं चाहिए। विरहय कांक्षे मैंने आपके विरह में उस प्रथम बर के प्रथम बर में क्या मांगा, दासान दास भविताश मन स्मरे, हमारा मन आपके चरण कमलों का
स्मरण करे,
आपके लीला कथाओं का, आपके नामों का, आपके गुणों का, सबका स्मरण। मन स्मरेत अशुपते गुणानंद, और गृणीत बाक, बाक माने हमारी जिह्वा रसना, उन्हीं का जो मन स्मरण कर रहा है उन्हीं का गुण कीर्तन करे, वही सब जो स्मरण कर रहा है। भगवान कैसे बड़े मधुर हैं, उनका रूप मधुर है, वेणु बाजन भी मधुर है, सब कुछ उनका, उनका ये वाणी के द्वारा वर्णन करें। और कर्म करो तू, और हमारे शरीर के द्वारा प्रभु की आपकी जो हम सेवा सब प्रकार से सेवा करें। क्या सेवा चाहते हो, नहीं विरहय कांक्षा है ना, समर्थ समंजस समंजसा, समंजस माने
सब कुछ देने में समर्थ,
सब कुछ देने में समर्थ है यार, तो ऐसा जो आपको वशीभूत करने में समर्थ हो वो चीज हमको दीजिए, ये तात्पर्य। आप सब कुछ देने में समर्थ हैं ये बात ठीक है, किंतु हमको तो वह चीज दीजिए जो आपको वशीभूत कर सके प्रेम के द्वारा, वैसी चीज, वैसी प्रेमा भक्ति हमको दीजिए, मैं आप हमारे वशीभूत हो जाए। रति तीन प्रकार की, साधारणी, समंजसा और
समर्था,
समर्था, समर्था का इन्होंने नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, इनके अधिकार के ऊपर की बात हो जाएगी। हाँ, इसलिए पृथ्वी महाराज है ना, तो अपने सामर्थ्य से ऊपर के क्यों मांगेंगे, चित्र के तुम्हारा, तो अपने समर्थ से बात क्यों मांगेंगे, इसलिए समर्था तक ही वो चाहेंगे, अरे समर्था बोल दो, समंजसा वही वही तक, वही प्रिय रुक्मिणी और सप्तभामा इत्यादि, वही प्रिया, प्रिय प्रिय है, वही तक लेंगे, और जब फिर उसका दूसरा कोई अर्थ करेंगे तब फिर उस, किंतु साधारण लोगों के लिए वही रति बहुत है, बहुत है उन लोगों के लिए। और वो दशमी स्कंद से पहले की बातें हैं, उसका प्रसंग भी नहीं है, और सामने कौन खड़ा है,
इंद्र,
इंद्र खड़े हैं ने? और इनके उपास्य कौन होंगे,
शंकरसन
राम का, इसलिए वो सब कहने में भी संकोच, उपास्य के लिए तो करें, उपास्य ही तो करें, पहले ही से रति ऐसी होती है जो अपना उपास्य निर्णय कर लेती है साधन अवस्था में ही, यहां तक कि साधन अवस्था के प्रथम अवस्था में ही अनर्थ रहते हुए जब रुचि होने लगती है तो थोड़ी 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 वो प्रकाशित होती है, और आसक्ति में तो करीब करीब बहुत कुछ हो जाता है, और भाव भक्ति में स्थाई भाव भी हो जाता है, स्थाई भाव किसमें होगा, इसलिए पहले ही से ये सब होता है। साधक का भजन करते 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 संघ के प्रभाव से अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से ऐसा होता है, कोई कल्पना वहां पर काम नहीं करेगी, कल्पना भी वहां पर होगी तो वो पूर्व जन्म के संस्कार से और आधुनिक की संस्कार से ही कल्पना वैसी होगी।
कल्पना का स्थान क्या है? गुरु वचन सुन रहे, गुरु वचन अनुभव तो ये बात ही कह रहे हैं, कल्पना का स्थान
क्या है? इसलिए कहते हैं विरहय कांक्षे, विरहय कांक्षे मैंने यहां पर दो प्रकार से विरह का भाव, आपका विरह ही हम चाहते हैं और दूसरा होगा आपके वो विरह को छोड़कर, आपके आपको छोड़कर के आपकी वो सेवा और आपके गुणगान मुख के द्वारा और कर्मों के शरीर के द्वारा काय के द्वारा आपकी सेवाएं और एक वो क्या स्मरण जीवा के द्वारा कीर्तन और शरीर के द्वारा इन तीनों के सिवा मैं कुछ, मैं विरह में एक क्षण भी हम नहीं रह सकते हैं। प्रभु जी ने कहा अरे भाई इसको कम मत समझो, ये सब चीजें साधारण नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, नाथ पृष्ठ और पारमेष्ट सार्वभौम रसाधिपत्य जो पुनर अपनर्भव ये कम नहीं है, तुम इनको लो। तो वो कहते हैं अपने सिर को धुन करके, ऐसे सिर पर अपने हाथों से न न न जितना जितना बार हुआ ना, न नागपृष्ठम न न पारमेष्टम न सार्वम सब न न न न न हमको ये जरूरत है, आंख बंद करके कहते हमको ये जरूरत, हम ये सब कुछ नहीं है। ऐसे ही यदि कोई प्रतिष्ठा दे रहा हो ना, मुख मोड़ लो, कहीं से धन आ रहा है तो मुख मोड़ लो, विषय सुख हो रहा है तो अभी से मुख मोड़ लो, कैसे मोड़ेगा? ऐसे नहीं मोड़ सकता, यदि भक्ति का इतना भी लेश होगा और उसकी महिमा का ज्ञान होगा तब तो असहज ही आता, और नहीं तो लाख चेष्टा करो घर ही टूट जाएगा, लाख चेष्टा करो। इसलिए जिसको तहां भक्ति थोड़ी सी हुई रुचि हुई ये सब चीजें अपने आप होने लग जाएगी। स्वर्ग परमेष्टि स्थान सार्वभौम पद रसा तलाधिपत्य जोगे रसंपद निर्वाण इत्यादि जतो छाड़ी सेवा तव नहीं मांगी ए मोर प्रतिज्ञा अकत्व। मैं सत 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 में कह रहा हूं मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये सब चीजें। नाम के आश्रय से ये सब चीजें दूर हो जाती हैं। यदि कोई नामाश्रय करे और भगवान की कथाओं को सुने क्रमशः कुछ दिनों तक, कोई साधन करे ना करे और हरी कथा सुनने लग जाए तो नाम के प्रति वही गुरु कारण करा देगी, वही गुरु की सेवा भी करा देगी और उनके मुख से गुरु वर्गों से शिक्षा गुरु और सब ये मिलकर धीरे धीरे नाम के प्रति रुचि जगा देंगे, संसार वासना संपूर्ण रूप से नष्ट करा देगी और ये सब चीजों की लालसा भी दूर करा देगी और क्रमशः भगवान में साधन भक्ति भाव भक्ति और अंत में प्रेम भक्ति हुई, ये हरि कथा। कहते हैं नमाश्रय में या भगवान की कथाओं को सुनने में जो आसक्ति जब हो जाती है तो उसके लक्षण क्या हैं, उसके लिए बतला रहे। चित्तम सुखे न भवतापहितम गृहेषु जन्निर्विशेषु च्युत करवापि गृहकृत्ये पादं न पदं चलत् तव पादमूलात् जामह कथाम ब्रजमथो करवामि किंवा। ये गोपियां कृष्ण के पास में आई, जिस समय आई कृष्ण ने बंसी वादन किया और उस समय में समस्त गोपियां अपने कामों को छोड़कर के कृष्ण के पास में दौड़ी। कृष्ण ने कहा जी अब तू चली जाओ, हमारा दर्शन हो गया और सुंदर अप्राकृत दृश्य ये देखा, पूर्णिमा का चांद निकल रहा और यमुना कलकल बह रही, सुंदर शीतल मंद सुगंध चल रही, अद्भुत चंद्र अपनी समस्त किरणों उसके द्वारा अमृत बिखेर रहा है, दर्शन किया अब तुम लोग लौट जाओ, रहने की कोई जरूरत नहीं। अपने पतियों की जाकर के सुख से सेवा करो। घर का जो सुख है तुम लोग जानती हो कौन हो, तुम ही लोग सुख हो। असल घर क्या चीज है, घर का सुख कहाँ है? गृहिणी, घर की स्त्रियां ही सुख है असल। यदि घर में स्त्री न रहे तो गृहस्थ का कोई घर नहीं है और न सुख है। इसलिए सुख की मूर्ति वो स्त्रियां, तो तुम लोग सुख है, तुम लोग लौट जाओ। और नहीं तो वो जो गृही लोग हैं तुम लोगों के बिना उनका संसार बेकार का हो जाएगा, इसलिए तुम लोगों को हर हालत में लौट जाना चाहिए। और भी धर्म का उन्होंने भय दिखलाया, सब कुछ दिखलाया। जब वो नहीं लौटी, चुपचाप खड़ी की खड़ी रह गई। थोड़ी देर के बाद में उन्होंने सोचा, ये हम लोगों की परीक्षा ले रहे हैं, न सचमुच कह रहे हैं न कि कैसे ये बातें चित करते हैं, इनके तो कोई ठीक नहीं है। अच्छी तरह से समझ करके तब फिर इसका उत्तर देना चाहिए, इसलिए प्रतीक्षा कर। जब उनका सब युक्ति और शास्त्र का प्रमाण सब कुछ समाप्त हो गया, तब ये लोग, आपने कहा जे हम ही लोग घर की सुख हैं, ये बात तो ठीक है, और इसलिए सुख को घर में लौटना चाहिए। एक और सुख है, वो सुख क्या है? घुमा तु एव सुखम, न अल्पम सुख, अल्पे सुखम, अल्प में सुख नहीं। जहां जहां हम स्वर्ग तक, वैकुंठ तक, वैकुंठ नहीं उसके नीचे तक, वो जितना भी है मुक्ति फुक्ति तक, इसमें अल्प सुख है, सुख नहीं है उसमें। सुख क्या है? हुमा पुरुषी, वही जिज्ञासितव्यम, उसी को ही जिज्ञास। वो भूमा पुरुष साक्षात कृष्ण है, वो आनंद की मूर्ति है। सत्यम सत्यम ज्ञानम
आनंदम
अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोपाम जन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन, वो पूर्ण ब्रह्म सनातन है, आनंदमय आनंदम एम ब्रह्म, वो आनंद कृष्ण। रसामित सिंधु हैं स्वयं वो, इसलिए वो कृष्ण ही सुख स्वरूप है। और इस संसार में क्या है, तुम लोग के कपड़े पड़े फाड़ रहे हैं। और माया सुख है इधर में, माया उसी के रूप में है, इसलिए कह रहे हैं जो हम लोग सुख स्वरूप ठीक हैं, किंतु अब हम जाएं कैसे? चित्तम सुखेन भवता प्रतम गृहेषु, हम तो गृह में थी और बड़े सुख से थी, और सुख की ही मूर्ति हम थी। आप जैसा करें वो बात भी ठीक है, किंतु आपने तो चुटकी बजाते ही बड़े सुख से ही, एक बंसी की मधुर आवाज पर ही हमारा चित्त सब कुछ हरण कर। चित्तम सुखेन भवता अपहृतम, अपहृतम मैंने चुरा लिया। हे चोर चक्रवर्ती, चोर चूड़ा मन, आपने तो, हम लोगों ने बड़े सुरक्षित ढंग से घर में अपने हृदय के भीतर में ये रखा था अपना चित्त, कोई नहीं ले सकता, किंतु आपने चुटकी बजाते ही, आपके लिए कोई अधिक परिश्रम नहीं, चोरी करने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, एक उसका एक माने प्राण तो दे हथेली में रख करके जाना पड़ता है। यदि सेंध काटा भी और भीतर गया और जागरण हो गया तो मारा जाएगा सब समय, यदि पकड़ा गया जैसे भी हो तो भी साहस करके, कितना वो बना करके, प्लान बना करके वो चोरी करता है, ऐसे ही साधारण रूप में चोरी, सब ठीक ठाक करके चोरी करता है। हमने सुना है, हमारे गांव का एक था वो व्यक्ति, वो कह रहा था जे एक बड़ा भारी डकैत था हम लोगों का तरफ का, तो दिल्ली कलकत्ता पहुंच गया, तो वो चोरी कैसे करता था, किसी दूसरे को नहीं रखता था, बड़े बड़े घरों में किसी प्रकार से पहुंच गया। अब पहुंच करके और चारों तरफ में अपने साथ मोमबत्ती या कुछ ले गया, और जला दिया चारों तरफ, और जला करके और दो चार साहब ऐसे शब्द कर दिया इधर उधर उधर, और सब लोग एकदम कांपने लगेंगे डर के मारे, और सबका शिकल चढ़ा करके कैसे तैसे घुस करके अकेला ही सब कुछ चोरी करके लेकर के चला गया बड़ा भारी। अब यहाँ का सुना है वृंदावन में मंदिर को ऊपर में जो चूड़े हैं ना सोने के रखे गए, वो माठ वाले जितने चोर, माठ वाले चोर क्या एक ऐसा कोई कहानी है ना, माठ के चोर इतने चोर होते थे कि जमुना में ही ऊपर से ही छलांग मार दिया एकदम। ऊपर चूड़ा में सोने का वो रखा था कलश, उसको लेकर के और चारों तरफ में जागरण हो गई तो वहीं से छलांग दे करके और जमुना में वहां से कूद गया और लेकर के भाग गया। प्राण हथेली में लेकर के तब वो चोरी करते हैं ऐसे सहज नहीं, किंतु आपने हमारा सबसे बड़ा धन जो है बिना कष्ट के ऐसे ही थोड़ी सी बंसी की आवाज से ही हमारा हम लोगों का सब कुछ चुरा। हमारा सुख तो चित्त में है, उस सुख को भी हम आपने सुखे न, हम लोग बड़े सुख से रहते हैं सुख की मूर्ति, उसको भी आपने चुरा लिया। जन निर्विशत करवा आप ही गृह कृत्य, आप कहते हैं कि अब घर चल जाओ। कैसे घर जाएं? आप हमारा चित्त लौटा दीजिए, हम लोग चली जाएं उसको लेकर के। अच्छा एक बात करो, आज तुम लोग चले जाओ, कल चले जाओ, परसों तुम आ जाना, परसों में हम तुम्हारा चित्त दे देंगे। वो कहती हैं आज ही अभी चाहिए, यदि चित्त ही नहीं रहा तो ये शरीर जा करके क्या करेगा। और करवामि किंवा, हम ब्रज में जाएं तो करेंगे क्या, हमारा चित्त तो आपने भी चुरा रखा है, और कल परसों देंगे, और आज कह रहे हैं जाने के लिए, तो हम लोग कैसे जाएं, हम नहीं जा सकते, पैर तो चलता नहीं है, चित्त ही चलाता है उसे, हाथ भी नहीं करता वो चित्त ही चलाता है, चित्त तो आपने पास में रख लिया और हमको कह रहे हैं जी आप चले जाओ, तो हम लोग कैसे, पादों न चलते। ये बंदर सब कर रहे हैं, सब लोग इधर में चले, कोई ऊपर में नहीं है, आदम न चलत, हमारे पैर ही नहीं चल रहा, और जा करके हम कब क्या करेंगे, पैरों की शक्ति भी थी, हाथों की शक्ति सब आपने ये सब कुछ ले लिया, और सुख स्वरूप हमारा जो सुख है, सुख के साथ ही हमारा मन भी ले लिया, सुखे न सह, सुख के साथ ही हमारा सुख जो कुछ था चित्त में वो सबको भी आपने क्यों ले लिया, कृष्ण के बिना अब वो रह नहीं सकते, इसलिए कृष्ण के संग में ही उनका सुख है, इसलिए वो सुख भी चला गया हमारा, इसलिए उस सुख के बिना, उस बिना चित्त के हम लोग वर में भेजने कैसे, हम जा नहीं सकते। कृष्ण कहता है मैं चलता हूं चलो, पर आपकी जाने की जरूरत नहीं, हमारा चित्त लौटा दिए बस उतना ही से हो जाएगा, आपको चलने की जरूरत नहीं। अर्थात जब श्रवण में ही इतना आनंद है, और वो भी श्रवण यदि अच्छी तरह से यदि हो, तब इसमें जितना आनंद है मुक्ति और सब कामों में सब कोई कुछ भी आनंद है। संसारिक गृह सुख तो देखते हैं, एक सुकरी को जितना सुख है और सुअर को जितना सुख है, उससे अधिक एक यहाँ के टाटा बिरला या जो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं उनको भी नहीं, बल्कि उन सुकरों को और सुकरी को अधिक सुख है, स्वाच्छंद सब कुछ है, विवाह शादी की भी लड़की की भी, यदि पांच लड़की हो गई तो चिंता के मारे मरेंगे, ये टाटा बिरला कोई भी रहेंगे, और सुकरी को 15-20-50 भी लड़की हो जाए तो कोई चिंता नहीं, खाने के लिए उनको कोई भी चिंता नहीं। हमारा यहाँ बहुत और सबसे बड़ी बात है, एक पति रखना जरूरी है, और उनके यहाँ सुकरी को और सुकर को कोई जरूरत, कोई प्रतिबंध ही नहीं है उनके ऊपर में, न कोर्ट है न अदालत है न कोई कुछ है, कुछ भी उनको नहीं है, सब विषय में कितना वो आनंद से है। इसलिए कहते हैं जैसे यदि सुख भी ये संसार का सुख यदि है तो उनको अधिक है, इंद्र खुश से सुख से इनका कम नहीं, इसलिए कोई भी सुखर इंद्र पद को नहीं चाहता। हम लोग चाहेंगे मुख से भले ही कह दे कोई, किंतु ये संसार का सुख छोड़ करके जो आपको आज इंद्र पद में हम मिल रहा है, आप इस जगत से इस शरीर को छोड़ करके अपने बाल बच्चों को छोड़ करके चलिए, कोई जाने के लिए राजी होगा? हम समझते हैं कि कोई नहीं जाने के लिए राजी, कोई भी अधिक उनका नहीं। इसलिए जो भगवान का भजन करने लगते हैं, इन चीजों को समझने लगते हैं, उनको संसार का कोई भी सुख कोई भी लोभ लालच नहीं आएगा। और जिनको नहीं है, इन कथाओं को ठीक से नहीं सुना, हृदय में नहीं रहा, वही लोग इन चीजों को छोड़ करके फिर संसारिक वस्तुओं में रम जाते हैं। अब हम आपके चरण कमलों को छोड़ करके कहीं भी नहीं जा सकते। जस्यास्ति भक्तिर भगवत्त किंचन सर्वैस्तत् गुणैस्तत् समासते सुरा हराम भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो वही। जस्यास्ति भगवत् भक्तिर अकिंचन, प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, जस्यास्ति भक्तिर भगवत् अकिंचन, जिन लोगों को भगवान के श्री चरण कमलों में अकिंचना भक्ति है, सर्वई गुणस्तत्र समासते, अकिंचना माने उत्तमा, अन्नाभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अनुकुलेन कृष्णासुलनम, यही शुद्धा भक्ति है, उत्तमा भक्ति है। जिसको ऐसी नीच किंचना भक्ति है जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, वही निष्किंचना भक्ति का ही ये बतलाए, न नाक पृष्ठम न चपारमिष्टम न सार्पम हम न रसाधिपति। तो जिसको भगवान के चरणों में ऐसी अकिंचना भक्ति है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते हैं, सर्वई गुण तत्र समासते सुरा, वहां पर जितने भी गुण हैं उनके प्रत्येक इंद्रियों में प्रत्येक देवताओं के साथ में वहां पर नित्य निवास करते हैं। सुरा यहां देवता किस लिए बतलाया? एक एक हमारी इंद्रियों के अधिष्ठाती एक एक देवता है, जैसे मन है, मन के अधिष्ठात्री चंद्र, हाथ में इंद्र है, नाशिका के अश्विनी कुमार,
चोक के सूर्य,
अच्छा चोक के सूर्य है,
जिह्वा के वरुण,
जिह्वा के वरुण है, और कान के जैसे माने समस्त इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता लोग हैं, ब्रह्मा भी किसी के हैं, और साथ साथ में मन के वो चतुर्व्यूह में से वासुदेव अथवा प्रद्युम्न जी को ये वो लोग भी वो अधिष्ठात्री देवता तो हैं, भगवान के अवतार इत्यादि भी सब इन इंद्रियों में है। तो समस्त गुण देवताओं के साथ हमारी इंद्रियों में निवास करते हैं। कब? यदि भगवान के चरणों में किसी को ऐसी सुंदर भक्ति हो जाए, अकिंचना भक्ति हो जाए, और किसी चीज की लालसा न रहे, अनुकूलता पूर्वक कृष्ण के लिए रोच माना, प्रातिकूल्य विवर्जित, समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा में यदि हो जाए, तब तो ये उत्तमा भक्ति होगी। तो ऐसी अकिंचना भक्ति यदि हो तो उसको अकिंचन वैष्णव कहते हैं, अकिंचन भक्त कहते हैं, निष्किंचन भक्त कहते हैं। शरणागत भक्त में और अकिंचन भक्त में अंतर है। शरणागत भक्त अभी भक्ति के देहली तक पहुंचा है, द्वार तक पहुंचा है, और अकिंचन भक्त बहुत ऊपर तक चले गए हैं, इसमें प्रेमा भक्ति इत्यादि सब तक ये आएगा, इसलिए ये उत्तम है। जैसे कि प्रहलाद महाराज ने भी कहा है ना कि निष्किंचनस्य भगवत ना ना ये नहीं निष्किंचनानां निष्किंचन वहां पर भक्ति शब्द उज्ज्य है, केवल निष्किंचन अकिंचन शब्द का प्रयोग उसमें किया है। क्या है वो क्या है श्लोक मत पाद जो अभिषेकम सूर्यो बिना ये दूसरा कहते हैं
बिना मौत पागर ये सब रघुवन राजा
ये कह रहे हैं प्रहलाद महाराज जी मतिर न इसी के बाद का श्लोक मतिर न कृष्णे परतो सतो वा मृत्यु भी पद्दे गृहपतानाम अदांत गोभीर विशतांग तमिषा पुनः पुनः चरित चरवणान तो निष्किंचनम निष्किंचन भक्त वह कौन है उत्तमा भक्ति वाला उसको अन्नाभिलाष ज्ञान कर्म कुछ भी नहीं अनुकूल रूप में भगवान की सेवा करता है इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहता तो ऐसे जो भक्त लोग हैं सर्वई गुण उन्हीं के इन समस्त इंद्रियों में शरीर में समस्त गुण रहते हैं अप्राकृत और उसमें समस्त देवता लोग वास करते हैं किस लिए वास करते हैं इसलिए कि वो भक्ति संक्रामित होकर के हमारे अंदर भी हो जाए देवता लोगों में भक्ति नहीं है इसलिए वो भक्त के द्वारा उनमें होता है संक्रमित इसलिए वो लोग भी देवता लोग रहते हैं हरावा भक्त से कुतो महान गुना जो भगवान के भक्त नहीं है हरव अभक्तस्य भगवान के चरणों में जिनकी भक्ति नहीं है उनमें इन महत गुणों की संभावना कहां से हो सकती है महत गुण कभी नहीं हो सकते हैं जिनमें भगवत भक्ति नहीं होती मनोरथेन असति धावतो बहिः क्योंकि उनका मन असत वस्तुओं में ही सब समय दौड़ता रहता है भगवान की तरफ में नहीं दौड़ता है इसलिए महत गुण उनमें रह नहीं सकते जितने भी सत्यवादी कर्ण हों